الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں سے میں یہ پروگرام کر رہی ہوں، وہاں پہ اس وقت تقریباً سحری کا ٹائم قریب ہے. آج جب میں اٹھی ہوں نوافل ادا کرنے کے لیے، تہجد کے لیے، تو مجھے خیال آیا کہ جہاں پہ میرا جانماز بچھا ہوا وہ ہارڈ فلور ہے. اور میں نے سوچا کہ مجھے بھول گیا کہ میں دوسرا جانماز یہاں پہ بچھاتی جو پیڈڈ ہے، کیونکہ فلور بہت سخت لگتا ہے. اسی وقت دل سے آواز آئی کہ اپنی قبر کے لیے کون سا پیڈڈ بستر تیار کیا ہوا، یہاں پہ تو بچھا لوں گی دوسرا جانماز، کہ گھٹنوں کو نرم لگے، سخت نہ لگے فرش بیٹھنے میں. لیکن قبر کے لیے وہ کون سا پیڈڈ بستر ہے جو میں نے اپنے عمل سے تیار کیا؟ تو بہت فکر ہوئی. ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں، ان سے ہماری یہی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قبر کے آسان کر دے، اس کے عذاب سے بھی ہمیں بچا لے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے، اور یہ نیکیاں ہماری خیریت سے وہاں پہنچ جائیں، حفاظت کے ساتھ پہنچ جائیں جہاں یہ نیکیاں کرنے کی فکر ہے اور ہم سب کوششوں میں لگے ہوئے، وہاں ان کو سنبھالنے کی بھی فکر ہونی چاہیے، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ ضائع بھی ہو جاتی ہیں. جیسے آپ بڑا اچھا کھانا اگر اس کو اپنی غفلت کی وجہ سے باہر پڑا رہنے دیں تو وہ خراب ہو جائے گا، اور پھر چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی مزیدار ہو، مگر کسی کے کام کا نہیں رہے گا. اسی طرح یہ نیکیاں بھی ہیں، اگر یہ ضائع ہو گئیں ہماری غفلت کی وجہ سے، ہمارے کچھ ایسے کاموں کی وجہ سے جو نیکیوں کو برباد کر دینے والے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ہم وہاں پہ خالی ہاتھ رہ جائیں. تو اس کا دھیان بہت رکھنا ہے کہ جس بیگ میں ہم اپنی نیکیاں جمع کر رہے ہیں اس میں کہیں سوراخ تو نہیں. اگر سوراخ والا بیگ ہوا تو ادھر ڈالتے جائیں گے ادھر نکلتے جائیں گے، اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، دیکھو میں کر تو رہی ہوں نماز روزہ، دیکھو میں کر تو رہی ہوں صدقہ و خیرات، مگر کہیں وہ راستے میں ہی گم نہ ہو جائے. تو ہمیں ہوشیار رہنا ہے ان کی حفاظت میں. اور یہ وارننگ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ہمیں دے دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری محنتیں کہیں یہ دنیا میں ہی ضائع ہو جائیں. تو کیا ایسا بھی کوئی چیز، کوئی کام ہے جس کی وجہ سے یہ نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں؟ ہماری تہجدیں، ہمارے نماز روزے، یہ ضائع ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ یعنی غریب، مفلس، فقیر جو ہے وہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم تو اس کو ہی سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، نہ کوئی درہم ہے، نہ کوئی سامان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت جو مفلس ہے نا، وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، یعنی ایسی بڑی بڑی نیکیاں یہ لے کر آئے گا، مگر اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگائے ہوں گے، تہمت لگائی ہوگی، یعنی اس کی عزت اچھالی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا. تو ایسا کرنے والے کو بٹھا دیا جائے گا، اور مظلوم سے کہا جائے گا، جتنے بھی مظلوم ہوں گے، کہ اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے جاؤ. تو ان مظلوموں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں और अभी भी हकदार खड़े हुए हैं, तो उन लोगों के गुनाह, उन मजलूमों के गुनाह इसके खाते में डाल दिए जाएंगे और इसको जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। अब खुद सोचें, ये बड़ी बड़ी नेकियां लेकर आया था, इतने बड़े अमल जिनको आज हम करते हुए भी सोचते हैं कि कितनी मुशक्कत होती है, कितना हम एफर्ट करते हैं, मगर लोगों के साथ ज्यादतियां, उनके हक मारने, उनके साथ बदसलूकियां, उनके साथ बुरा करना, इस वजह से सब समझ लें पानी में बह गया। आज हम समझते हैं ना कि हम जो मर्जी करें, जिसके मुतालिक जैसा मर्जी बोलें, चाहे किसी को गाली दें, चाहे किसी को इल्ज़ाम लगाएं, चाहे किसी की इज्जत उछालें, चाहे किसी का मजाक उड़ाएं, चाहे किसी के ऊपर कोई भी ज्यादती करें अपनी जुबान से, या किसी का हक मारें क्योंकि हम ताकतवर हैं और वो मिस्कीन है, गरीब है, या उसका कोई वाली वारिस नहीं है, तो हम जो मर्जी करें ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है। हाँ, वो आज कुछ नहीं कर सकता, वाकई नहीं कर सकेगा शायद, मगर एक दिन तो ऐसा आने वाला है कि ऐसे सब लोग अपना हक लेने खड़े हो जाएंगे। जो आज अपना हक नहीं ले सकता वो वहां लेगा, और फिर वहां कैसे हम हक देंगे उनका, क्योंकि वहां पे तो कोई करेंसी नहीं है, कोई पैसे नहीं है कि उनको अदा कर दें, अपनी जान छुड़ा लें, और कोई माफ भी नहीं करेगा, किसी में इतना रहम नहीं होगा कि वो कहेगा हाय बेचारा मैं इसको माफ कर देता, कोई नहीं माफ करेगा, अपनी औलाद नहीं माफ करेगी, अपने प्यारे नहीं माफ करेंगे, क्योंकि उस दिन हर एक को नेकी की जरूरत होगी, हर एक चाह रहा होगा कि मैं दूसरे से ले लूं, कहीं से मुझे नेकी मिल जाए, मेरी जान छूट जाए, तो कौन माफ करेगा भला। अब इस बंदे के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं होगा कि वो अपनी नेकियां दे के ये हक अदा करे, जिसके जिस किस्म के भी हक मारे हैं, या जिसके जिस किस्म की भी ज्यादती की भी है, और इंसान बेबस होगा। कितनी जबरदस्त बेबसी की तस्वीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींची है कि वो तो कंगाल हो गया ना, वो तो फकीर हो गया, ये है इस उम्मत का फकीर। यहां तो सब मालदार है, लेकिन सोचें दुनिया के मालदार वहां पे कैसे कंगाल हो जाएंगे, कितने गरीब हो जाएंगे। तो फिर कितनी जरूरी है कि हम हर बदकलामी से बचें, किसी की इज्जत उछालने से बचें, किसी को बेइज्जत करने से बचें, उसके पीछे या उसके सामने, किसी की चुगली करने से बचें, किसी पर इल्जाम लगाने से बचें, किसी का माल नाहक खाने से बचें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ही नेकियों का सरमाया ही डूब जाए और हमारे जैसों के पास तो कुछ ज्यादा है ही नहीं। तो फिर कैसे हम लोगों के हक अदा करेंगे? फिर इसका मतलब जरूरी है कि हम यहीं पे उनसे माफी ले लें, क्योंकि यहां पे तो किसी ना किसी तरह कॉम्पेंसेट हो सकता है, यहां पे तो नेकियां नहीं देनी पड़ेंगी, यहां उसको पैसे दे सकते हैं, उसे माफी मांग सकते हैं, उसको प्यार मोहब्बत से उससे समझा बुझा के किसी तरह उसको खुश कर सकते हैं। इसीलिए प्यारे नबी ने फरमाया कि जिस किसी के जिम्मे उसके किसी भाई का कोई भी हक है, तो वो इस हक से आजादी हासिल कर ले दुनिया में ही, यानी कि क्योंकि कयामत के दिन दिरहम और दीनार नहीं होंगे, वहां पे तो सिर्फ नेकियां ही होंगी। तो इसलिए यहां पर जरूरी है कि अभी हम जिंदा हैं, जहां जहां हमने कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं वहां पे हम उनको फिक्स करने की कोशिश करें, क्योंकि वो दिन बहुत मुश्किल दिन है, और उस दिन अपनी नेकी के सिवा कोई चीज इंसान को नहीं बचा सकती। और यहां से हमें ये पता चलता है कि लोगों के हकूक का मामला कितना सेंसिटिव मामला है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंसानों के साथ बदसलूकियां, बद अखलाकियां, खा वो रिश्तेदार हो, हमारे कोई प्यारे ही हो, हमारे कोई अजीज हो, दोस्त अहबाब हो, या कोई गैर हो, के साथ भी जायज नहीं। ये ना हो कि ये लोग नेकियां लेके चले जाएं उससे और हम खाली हाथ रह जाएं। आप इससे अंदाजा करें कि इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शहीद भी है ना अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाला, उसका भी हर गुनाह माफ कर दिया जाएगा सिवाय कर्ज के। उसने किसी इंसान का कर्ज देना होगा ना, तो वो नहीं माफ किया जाएगा, वो उसको देना पड़ेगा। और फिर आपके सामने उस औरत का वाकया भी है जिसके बारे में पूछा गया था कि या रसूलल्लाह फलां औरत रात को तहज्जुद पढ़ती है, दिन को रोजा रखती है, यानी कितनी नेक है और इतना सदका व खैरात करती है। तो अब आप इसके बाद क्या उसको कहेंगे कि बहुत नेक है, देंगे तहज्जुद गुजार, रोजेदार, सदका करने वाली, लेकिन अपने हमसायों को तकलीफ देती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि उसका ठीक है कोई बात नहीं, नमाज रोजा तो करती है, नहीं, आपने फरमाया उसमें कोई खैर नहीं, वो जहन्नमी है। इस वाक्य से पता चलता है कि आपकी परहेजगारी अपनी जगह, मगर अगर इंसानों को सताया, ये सिर्फ हमसायों की बात नहीं है, किसी को भी सताना, अपने रिश्तेदारों को सता रहे हैं, उनके अंदर फूट डलवा रहे हैं, उनके फसाद, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, चुगलियां कर रहे हैं, लोगों को लड़वाने में मजा आता है, अपने नंबर बना रहे हैं, बातें इधर उधर करके। जानते हैं कयामत के दिन सबसे बदतरीन इंसान कौन होगा? सबसे बदतरीन। हदीस में आप वो जो एक के मुंह पे कुछ कहता है, दूसरे के मुंह पे कुछ और कहता है, यानी इसके सामने है तो उसकी बड़ी तारीफें और उससे बड़ी प्यार मोहब्बत और उससे बड़ा बड़ा अच्छा सलूक। और जो ही वो मुंह मोड़ के जाता है, कहते हैं तो ऐसी थी, ये तो ऐसी थी, ये तो ये है, ये तो ये है। डबल फेस, डबल फेस इंसान हमें भी अच्छा नहीं लगता, तो अल्लाह के यहाँ क्या अच्छा होगा? और इधर की बातें उधर लगाना, रिश्तेदारों में ये चीजें बहुत होती हैं। तो क्या हर कोई इस तरह से अपनी वैल्यू बनाता है? इसके पास बैठे तो इसकी बातें करने लगे, इसको खुश कर दिया उधर की बातें करके, उसके पास गए तो इसकी बातें करके उसको खुश कर दिया। औरतों में ये कितना कॉमन है। हालांकि हमें तो लोगों के दरमियान सुलह सफाई करनी करानी चाहिए। अगर कई मामला बिगड़ा भी हुआ तो उसको भी हवा ना दे, चाहे वो मियाँ बीवी के दरमियान है, चाहे वो दो बहन भाइयों के दरमियान है, हम उल्टा उसको हवा देते हैं। अल्लाह के हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जो नमाज से, रोजे से, सदका व खैरात से भी ज्यादा अफजल है, यानी नफली नमाज पढ़ना, नफली रोजा रखना, सदका करना। हम इनको कितनी बड़ी नेकियां समझते हैं, इससे भी ज्यादा बड़ी नेकी जानते हैं क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों के दरमियान सुलह करवाना। याद रखो, लोगों में फसाद डालना दीन का सफाया कर देता है, दीन रहता ही नहीं है। तो लोगों में सुलह करवाने की हिरस होनी चाहिए कि ये आपस में मिल बैठे। हम कहते हैं हमारे नंबर कैसे बनेंगे अगर ये आपस में मिल बैठे, इनको लड़ाई रखो ताकि मैं बड़ी अच्छी बनी रहूं। अल्लाह अकबर। तो इससे पता चलता है इंसानों को अजियत देना ना, ये कहाँ तक भरना पड़ जाएगा। अजियत किसी तरह से भी, जुबान से दे दी, उनका कुछ छीन के, उनका कुछ बुरा करके, उनमें फूट डलवा के, या उनको सता के, या उनको गालियां दे के, या उनकी बेइज्जतियां करके, या उनकी चुगलियां करके, या उनको मार पीट के, या उनके ऊपर कोई इल्जाम लगा के, या उनको कोई बेइज्जत करके, ये सारी चीजें, ये ना हो कि हमारे नमाज रोजे जाते रहे। तो ये महीना जो है इसमें अपने आप को चेंज करना, हमने अपनी जुबानों को बेहतर बनाना है। जाहिर है ओवरनाइट तो चेंज नहीं आ सकती, मगर फर्क आहिस्ता आहिस्ता तो डाल सकते हैं। अच्छी चीजों को अपने अंदर पैदा करना है, बुरी चीजें अपने से दूर करनी है। जब दिल करे ऐसा कोई काम करने का, तो उस वक्त ये जो बातें इनको याद कर लें। ये देखो ऐसी औरत जो नमाज, नमाजी, तहज्जुद गुजार, रोजेदार, सदका खैरात करने वाली, वो भी जहन्नुम के अंदर चली गई इस वजह से, किसी को सताना इतना बड़ा गुनाह, चाहे वो अपने घर वाले क्यों ना, चाहे वो अपने बच्चे क्यों ना हो, अपने ठीक है आप उनकी इसलाह भी करेंगे, उनके ऊपर सख्ती भी करेंगे नमाज में इसमें, लेकिन ख्वाम खा सताए जाना, हस्बैंड को सता रहे हैं। हालांकि हदीस में आता है अल्लाह ताला उस औरत की तरफ भी नहीं देखेगा जो अपने खामिद की नाशुकरी करती है, हालांकि वो उससे कभी भी किसी सूरत में भी मुस्तगनी नहीं हो सकती, यानी उससे बेनियाज नहीं हो सकती कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, उसको हमेशा उसकी ज़रूरत रहती है। अल्लाह ताला जिसकी तरफ नहीं देखेगा ना कयामत के दिन, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और दूसरी एक और हदीस में आता है कि वो तेरी जहन्नुम है और वही तेरी जन्नत है। आप सोच लें शोहरों के साथ हमारा क्या सलूक है, उनके साथ कैसी जुबान दराजियां हैं, या क्या उनके साथ हम करते हैं। तो आज का दिन हम जरा इन बातों पे गौर व फिक्र करें कि मैं किसी को सताती तो नहीं, मैंने किसी की जिंदगी तो अजीरन नहीं बनाई, मेरी वजह से किसी की जात को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही माजी में या अब। तो फिर देखें कि दिल में किसी का भी नाम आता है कि उसको मैंने शायद सताया था, उस वक्त उसका मैंने शायद मजाक उड़ाया था, शायद मैंने उसकी गीबत की थी, शायद मैंने अनजाने में उसके ऊपर इल्जाम लगाया था जबकि मुझे यकीन भी नहीं था कि वाकई उसने ये काम किया भी है या नहीं, शायद मेरी वजह से फलां हर्ट हुआ था। कहीं दिल के कोने में जरा सी भी हल्की सी भी आवाज आए ना, तो बेहतर है हम ये जिंदगी में अपना मामला साफ कर लें। देखिए याद रखिए, एक बंदा हो सकता है कि बहुत ज्यादा तहज्जुद गुजार है, बहुत ज्यादा नेकियां करता है, लेकिन उसने लोगों को सताया है ना, तो वो जहन्नमी हो जाए। लेकिन दूसरा बहुत ज्यादा तहज्जुद गुजार नहीं, बहुत नेकियां नहीं करता, मगर उसकी जात सबके लिए खैर का बायस है, वो बेहतर रह जाएगा उस दिन। क्योंकि इसी हदीस में आगे चल के कि फिर पूछा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फलां औरत है वो सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ती है या पनीर के चंद टुकड़े वो सदका करती है, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं देती। अब हम क्या ऐसे आदमी है या औरत है हम कहते हैं लो ये क्या, इसी ये तो कोई नेक ही नहीं है, फर्ज नमाज पढ़ती है। कई लोगों को ऐसे जानती हूँ मैं कि जो सिर्फ फर्ज फर्ज अदा करते हैं मगर वाकई वो किसी को तकलीफ नहीं देते। आप सरसर ने फरमाया ये खातून जन्नती है। अब देखने में लोग उनको कुछ नहीं समझते, उनको नेक नहीं कहते, वो तो अपने आप को नेक कहते हैं कि हम बड़े तहज्जुद गुजार, हम देखो रोजा रखते हैं हम, और ये क्या, नेवर नो। अगर मेरी जात से लोगों को तकलीफ पहुंच रही है तो मेरी तहज्जुदें कुछ नहीं है, ये मेरे रोजे कुछ नहीं है। तो बड़े दिन के खसारे से बचने के लिए अपना हिसाब किताब आज कर लें। और ये चीजें अक्सर हम या तो ससुराल वाले होते हैं उनके साथ उनके साथ ये हो जाती हैं, बदगुमानियां गिबतें चुगलियां इस तरह की चीजें, या कोई बहुओं वाली हैं तो बहुओं के साथ कैसे कर लेती हैं। तो इस दुनिया में ही बेशक माफी मांगना बड़ा मुश्किल है, मगर कोशिश करें कि इस दुनिया में ही कर लें। और अगर ये याद पड़ता है कि फलां की गिबत की है, या अब याद भी नहीं, या याद भी नहीं होता बाज दफा कि किस किस की कर चुके हैं, तो अब उससे कैसे माफी मांगे, ये याद है भी तो आप कैसे जाके उसको बताएं कि मैं तो तेरी गिबत करती थी। तो इसके लिए भी मैं आज आपको एक दुआ बताऊंगी कि जिससे कि ये इंशाल्लाह हमारा अगर ऐसा हो चुका है तो ये गुना धुल सकता है। इसी तरह आज कोशिश कीजिए या इस महीने में कोशिश करें कि कोई बीमार है तो उसकी बीमार पुरसी कर लें, क्योंकि ये भी बड़ा नेकी का काम है। देख लें इंसानियत के काम आ जाना, इंसानों के लिए कुछ कर जाना, ये कितना बड़ा अमल है। देखिए ना ये भी बीमार पुरसी करना, किसी बीमार का हाल पूछ लेना, उसके पास चंद मिनट बैठ जाना, उसको तसल्ली दे देना, उसके साथ कोई अच्छी बातें कर लेना, उसको उम्मीद दिलाना, ये इतना अल्लाह ताला को प्यारा अमल है कि फरमाया कि अगर कोई सुबह को बीमार पुरसी करता है तो 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक उसके लिए भलाई और रहमत की दुआ करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि हम लोगों को कहते रहते हैं जी अपने दुआओं में याद रखें, दुआ हम खुद क्यों नहीं वो काम करते जिससे फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करें। शाम को बीमार कुर्सी करता, सुबह तक 70,000 फरिश्ते दुआएं करते हैं। और उस ऐसे इंसान को हदीस में आता है जन्नत के फल अता किए जाएंगे जो ये करता है। कितना आसान काम है, कितना आसान काम है, लेकिन क्या कभी हमने ये इसलिए किया कि मेरे लिए 70,000 फरिश्ते दुआएं करें? हाँ, बस दुनियादारी के लिए करते हैं, क्योंकि अगर नहीं गए किसी को पूछने तो वो कहेंगे देखो जी ये आए नहीं थे हमारी बीमारी में पूछने, इसलिए हम जाते हैं। या जाते हैं इसलिए कि फिर बाद में इनसे कोई काम भी तो पड़ सकता है, तो उनकी बीमार पुरसी करने चले हैं। कभी ये सोच के भी बीमार पुरसी की है कि मेरी नेकी लिखी जाए और फरिश्ते मेरे लिए दुआएं करें? जब नियत ही नहीं तो क्यों मिले ये सब कुछ? आप तो ये नियत करके जाना है। मैंने जैसे आपको कहा कि ये हमने शौरी रमजान गुजारना है, तो बीमार पुरसी करने भी जाए तो सोच के जाए, लेकिन उसके आदाब भी जानने जरूरी है। ऐसा ना हो कि किसी को तंग ही कर दें इतनी ज्यादा देर उसके पास बैठ के। तो ये जो काम है ना इंसानों के साथ करने के, इंसानियत के, ये भी इंसान को बहुत आगे ले जाते हैं। ये अल्लाह ताला को देखिए, अल्लाह बेनियाज है, उसको जरूरत नहीं कि आपने बड़ी तहज्जुदें पढ़ी हुई है, बड़ी ये, वो बहुत बड़े अमल है, बहुत बड़े अमल है, बहुत बड़ी नेकी के अमल है, उनको हम हकीर नहीं समझ सकते। लेकिन अगर उनके साथ ये काम चल रहे हैं जो जैसे मैंने आपको कहा सुराख वाले बैग हैं, तो ये ना हो कि सारे अमल जाया हो जाए। एक और देखिए, जैसे यह हदीस में आता है अल्लाह ताला के नजदीक महबूब तरीन वो है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा नफामंद है। अल्लाह के महबूब हम बन सकते, लोगों के लिए फायदा मंद बने, किसी को भी फायदा पहुंचा दे अपनी जात से, बजाय कि आप अजियत देने वाले बने, फायदा देने वाले बन जाए, कि लोगों को आपकी जरूरत हो, वो आपकी तरफ देखें। जब हम दुनिया में ना हो तो वो हमें मिस करें कि ये जात कितनी अच्छी थी जिसे हमें फायदा मिलता था, ना कि वो ये कहें कि शुक्र है इससे जान छूटी। तो अपने इर्द गिर्द वालों के लिए नफा मंद बन जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा तरीन अमाल कौन से हैं? वो खुशी जो इंसान अपने भाई को देता है, यानी अपने मुसलमान भाई बहन को आप खुशी दे देते, या उससे किसी तकलीफ को दूर कर देता है, या उसकी भूख मिटाने का सामान कर देता है। ये भी कितने आसान काम है। हो सकता है आपकी किसी बात, आपके किसी अमल की वजह से किसी तकलीफ दूर हो जाती, वो परेशानी में है, किसी की परेशानी दूर कर दे, किसी को खुश कर दे, कुछ दे के, कुछ उसको, कुछ उसके लिए सामान करके। दुनिया में तो ये काम आसान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने लिए फरमाया कि मेरा किसी मुसलमान भाई के साथ जाना कि मैं उसका कोई काम कर दूं, वो मेरे लिए इस बात से भी ज्यादा महबूब है कि मैं मस्जिद नबवी में 1 महीने तक इतकाफ करूं। इस इतकाफ से भी ज्यादा मुझे महबूब है कि मैं किसी के साथ जाऊं और उसका काम करा दूं। मतलब ना आपकी वजह से किसी का काम हो सकता है, किसी का फंसा हुआ काम है, आप अगर दो बात कह देंगे, आप किसी को कह देंगे, उस बेचारे का काम हो जाएगा, जायज काम है। लेकिन आप कहते हैं हमें क्या मुसीबत है, हमें क्या पड़ी हुई है। भाई आपकी वजह से अगर किसी की मुश्किल दूर हो जाती है तो क्या इसमें हर्ज है? लेकिन ये देख लें कि हम इन चीजों के अंदर ज्यादा तवज्जो नहीं देते, तो इसलिए इसकी तरफ तवज्जो दीजिए, इसकी ये इन कामों को इम्पोर्टेंस दे के करें। मैं अल्लाह की महबूब बन सकती। अब आते हैं अपने दिन को सजाने की तरफ। जहां हम इफ्तार करेंगे उसकी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। इफ्तार के वक्त को सजाना, आपने उम्मीद है कि अपने उन 3 औकात को जाया नहीं किया होगा, उनको याद रखा है आपने जो आपको बताए थे, सहरी से पहले तहज्जुद का टाइम 1 घंटा पहले उठ जाए, फिर इसी तरह मैंने आपको कहा था, फजर से लेके इशराक तक का टाइम, और इफ्तार से पहले 1 घंटा, चलो 1 घंटा नहीं, आधा आधा घंटा कर लें, इसको हर एक की अपनी हिम्मत है। तो इन टाइम्स को ज़ाया नहीं करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। तो इफ्तार के टाइम भी हम दुआएं करेंगे, और इफ्तार कैसे करनी है, बिस्मिल्लाह पढ़ के, फिर आपने कुजूर से इफ्तार किया, फिर पानी पिया, और फिर दुआ पढ़ी, ज़हब ज़मा व अब्तल्ला तिलु रोक व सबत अजरु इनशाला। तो ये दुआ है जो मसनून दुआ है, जो दुआ है ना अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुमतु, वो एक हदीस है मगर वो रिवायत भी ज़यीफ़ है, पढ़ तो सकते हैं मगर ज़यीफ़ रिवायत है। तो ये जो है बिस्मिल्लाह करके आपने ये वाली दुआ पढ़ ली, ये जब पानी पिया तो फिर ये वाली ऑथेंटिक है। इसी तरह जो हमारे यहाँ रोज़ा रखने के वक्त एक बड़ी मशहूर दुआ बिसौमी गदिन नवईतु वाली, ये किसी हदीस में नहीं है, कहीं पे भी ये दुआ नहीं मिलती, ये कहीं खुद ही बनाई हुई है। तो जो भी ये नेकियां है ना, इसमें दिल के इरादे को ही नियत कहते हैं, बोल के कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं कल का रोज़ा रख रही हूँ, रोज़ा आज रख रहे हैं, बोल रहे हैं कल का रोज़ा रख रही हूँ, तो वैसे ही बिल्कुल ही अरबी में उसकी सही नहीं है। और आज एक और सुन्नत गैर मौकदा आपको बताती हूँ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा नहीं किया, मगर इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी कभी एहतमाम इसका करते थे, मगर सहाबा इस का बड़ा शौक़ रखते थे इस सुन्नत को अदा करने का। और ये है, जब आपने रोज़ा इफ्तार कर लिया, अब अजान तो हो गई है, अब जमात से पहले, अब हम तो घर में पढ़ते हैं, लेकिन चलो आपने 5-7 मिनट में जो इफ्तारी की चीज़ खानी है आपने खा ली, फिर उसके बाद आप जब मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं ना, तो 3 फ़र्ज़ मगरिब के पढ़ने से पहले ये 2 सुन्नत पढ़नी। ये सहाबा इतनी शौक से पढ़ते थे कि अगर कोई नया आदमी मस्जिद में आता था, वो समझते थे शायद मगरिब की जमात हो चुकी है, उसके बाद की ये 2 सुन्नतें हैं। तो हालांकि ये मगरिब की 3 फ़र्ज़ों से पहले 2 सुन्नतें ये हैं। बुखारी में इसकी रिवायत मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नमाज पढ़ो, सब सल्लू कबला सलातिल मगरब, यानी सलात मगरब से पहले नमाज पढ़ो, ये वाले जो 2 रकतें हैं, 3 दफ़ा फरमाया, और तीसरी दफ़ा में ये फरमाया लिमन शाह, जो चाहे पढ़ ले, ताकि कोई ये ना सोचे कि ये फर्ज हो गई है या ये जरूरी है ऐसी। तो याद रखें, इनको बोझ समझ के नहीं पढ़ना, आपसे पढ़ी जाती पढ़ी नहीं पढ़ी जाती कोई मसला नहीं है ऐसा, मगर ये ना समझे कि हाय अब मुश्किल, अब तो हमें ये भी एक पढ़नी पड़ गई, अब ये भी। इसलिए मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है आप में से कोई पढ़ सकते हो, और हो सकता है कोई कुछ भी ना इनमें से कर सकता हो, तो लेकिन जो पढ़ सकती हैं, या आपको पता होगा ना आज, तो आज नहीं तो कल हो सकता है आपको मौका मिल जाए, कभी टाइम मिल जाए, तो फिर इल्म होगा तो इंसान कर सकता है। और रमज़ान में तो, क्योंकि हर एक का शौक होता है कि हम ज्यादा करें ज्यादा करें, तो कौन सी वो चीज़ें हैं जो हम कम अज़ कम रमज़ान में तो ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने 4 सुन्नत ऐड की असर से पहले, 2-2 करके जो पढ़नी थी, अगर आपको अभी तक नहीं याद रहा कोई मसला नहीं है, जिस दिन भी याद आ जाए, इसलिए मैं बार बार दोहराती हूँ ताकि किसी दिन भी आपको याद आ जाएगा तो फिर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, तो आज का जो, अच्छा एक में और इम्पोर्टेंट बात, बहुत ज़रूरी बात है कि जो हम औरतें नमाज पढ़ेंगी ना, तो हमारे एंकल्स, जो हमारे टखने हैं, ये ज़रूर कवर होने चाहिए, ये नमाज के लिबास में आप ये ज़रूर याद रखिएगा, ऐसी टाइट्स पहन के नमाज ना पढ़ें, ऐसी शलवारें जो ऊंची होती हैं उनके साथ नमाज ना पढ़ें, कि टखने आपके खुले नहीं होने चाहिए, मर्दों के टखने नंगे होने चाहिए, औरतों के कवर होने चाहिए। तो अल्लाह ना करे ये ना हो कि टखनों के अनकवर होने की वजह से हमारी नमाज ही ज़ाया हो जाए, तो कवर करके रखना है उनको, ठीक है। अच्छा, जो दुआ मैंने जो आपको कही है कि ये दुआ है जो आपने आज करनी है, ताकि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश कर दे, हमारे मुंह से किसी के लिए भी ऐसी कोई बात निकल चुकी है, तो अल्लाहुम्मा फअय्युमा मुमिनिन सबबतुहु, ए अल्लाह मैंने जिस मोमिन को भी बुरा भला कहा हो, कोई गाली दी हो, कोई बुरा कहा हो, फजअल ज़ालिका लहू क़ुरबतन इलैका यौमल क़ियामा, तो ऐ अल्लाह इसे क़ियामत के दिन अपनी कुर्बत का जरिया बना देना, यानी आपने उसके लिए दुआ कर दी। और आज का जो जिक्र है ये भी बहुत ही प्यारा जिक्र है, इसलिए क्योंकि इस जिक्र से हमें बड़े कुछ फायदे मिल सकते हैं। आसान जिक्र, बिल्कुल आसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी ये जिक्र सुबह के वक्त कर लेता है तो अल्लाह ताला इसकी वजह से 10 नेकियां लिख देता है, 10 गुना माफ कर देता है, 10 दर्जे बुलंद कर देता है, और 4 गुलामों को आजाद करने के बराबर सवाब मिलता है। और बेशक ये कलिमात उसकी हिफाजत करते हैं। और जिसने मगरिब की नमाज के बाद कहा तो सुबह तक इसी तरह होता है उसके लिए, 10 नेकियां लिखी जाए, 10 गुना माफ, 10 दर्जे बुलंद, 4 गुलामों को आजाद करने का सवाब, और फिर उसकी हिफाजत सुबह तक होती है। तो 10 दफा ये कहेंगे तो 10 10 चीजें ये मिलती जाएंगी, और बहुत आसान है, यकीन जाने 2 मिनट भी नहीं लगते हैं ये कलिमात कहने में। कितनी नेकियां हमारे लिए बिखरी पड़ी हैं आज, तो हमारी सांस चल रही है तो हम तब तक ये नेकियां कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10 दफा ये कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक ला, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुव अला कुल्ली शैइन कदीर। जो मेरे साथ लास्ट रमजानों में रह चुके हैं तो आपको याद होगा कि हमने इसकी तस्बीहात भी की थी आखिरी 10 रातों में, अपने प्रोग्राम में हमने इसकी तस्बीह भी की थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुव अला कुल्ली शैइन कदीर। ये बहुत जबरदस्त कलिमात है, अल्लाह ताला हम सब से कबूल फरमाए, और हमें जो हम भी थोड़े बहुत काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करने की हमें तौफीक अता फरमाए, ये हम इनको कयामत के दिन तक पहुंचा सके और ये दुनिया में जाया ना हो जाए। अच्छा, आखिरी बात आप ये नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला फ्राइडे से हम अपना ये प्रोग्राम 10 मिनट पहले शुरू करेंगे। जो लोग भी लाइव सुनते हैं वो प्लीज सुन ले कि फ्राइडे से 10 मिनट पहले आपने आया करना, क्योंकि हमारा सहरी का टाइम पीछे जा जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती कल, सेम टाइम रहेगा फ्राइडे से इंशाल्लाह। ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।